वैदेही देव के साथ रोड पर रिपोर्टर की लाश के पास थी। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी और उसकी लाश की शनाख्त कर रही थी। इंस्पेक्टर ने अपने हाथ में रिपोर्टर की आईडी कार्ड पर लिखा उसका नाम जोर से पढ़ा। शिवम ठाकुर, उम्र 32 साल, पलपल न्यूज महाराष्ट्र। नाम पढ़ने के बाद उसने रिपोर्टर की लाश की तरफ देखा। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। बहुत ही बुरा हुआ बप्पा, ऐसी मौत किसी को ना दे। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ मैडम, आप इन साहब के साथ आधी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मैं विद्या सावंत और ये मेरे पति देव सावंत, वैदेही ने अपना नकली परिचय दिया। मेरे पति और मेरे जेठ का झगड़ा हो गया था, इस वजह से हम लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए आए थे। यहाँ नौकरी के अच्छे साधन हैं तो हम लोग यहाँ आ गए। वैदेही ने उन्हें एक छोटी कहानी सुना दी। उन दोनों के कपड़े और बोलने के तरीके से इंस्पेक्टर को ज्यादा शक भी नहीं हुआ और वो आगे की शिनाख्त करने लगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देंगे, आप दोनों अपने नंबर लिखवा दीजिए, हम आपको कभी भी पुलिस स्टेशन बुलवा सकते हैं, इंस्पेक्टर ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा। देव ने कांस्टेबल को उन दोनों के नंबर लिखवा दिए। कुछ देर बाद वहां एम्बुलेंस आई। आगे की शिनाख्त के लिए रिपोर्टर की लाश ले जाई जा रही थी। पुलिस अपनी जीप में बैठकर वहां से जा रही थी कि तभी वैदेही दौड़कर इंस्पेक्टर के पास गई। साहब, हम लोग यहाँ पर नए हैं और किसी को नहीं जानते हैं। ऑटो वाला भी हमें बीच में ही छोड़कर भाग गया। क्या आप हमें किसी सस्ते से धर्मशाला या रुकने की जगह के बारे में बता सकते हैं? उसने कहा। ठीक है, रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती है, हम तुम दोनों को उसके आगे छोड़ देंगे। इंस्पेक्टर ने उन दोनों को अपने साथ आने की इजाज़त दे दी थी। वैदेही और देव पुलिस की वैन में बैठकर जा रहे थे। इस केस में पड़ना उन दोनों के लिए मुसीबत बन सकता था और साथ ही उनकी छानबीन में रुकावट भी। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने उन दोनों को एक धर्मशाला के आगे रोका। वो वहां पहुंचे तब सुबह के 7 बज रहे थे। खूब खूब धन्यवाद सर, वैदेही ने हाथ जोड़कर कहा और देव के साथ धर्मशाला के अंदर आ गई। जल्द ही उन्हें रहने के लिए वहां पर एक कमरा मिल चुका था। अंदर जाते ही दोनों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में वो दोनों बहुत कुछ देख चुके थे। मैं चेंज करके आती हूँ, बोलते हुए वैदेही ने अपने लिए सूटकेस में से जल्दी से एक साड़ी निकाली। तभी उसका ध्यान गया कि कमरे में बाथरूम नहीं बना हुआ था। आप कर लीजिए चेंज, तब तक मैं खाने पीने का कुछ पता करके आता हूँ, कहकर देव बाहर चला गया। उसने वहां पर रुकने के साथ साथ खाने पीने के बंदोबस्त के बारे में भी पूछ लिया था। लौटते वक्त उसके हाथ में 2 कप चाय और साथ में बिस्किट के पैकेट थे। वो अंदर आया तो वैदेही ने कपड़े बदल लिए थे। उसने एक सादी सी साड़ी पहन ली और मेकअप हटाकर पहले की तरह सामान्य हो गई। अब लग रहा है कि मैं वैदेही मैम के साथ में हूँ, देव ने हल्के मजाकिया तरीके से कहा। उसके हाथ में चाय देखकर वैदेही बोली, तुम्हें पता है ना मैं चाय नहीं पीती, इस वक्त मुझे कॉफी की सख्त जरूरत है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अभी के लिए इतना ही मैनेज हुआ है और ये 2 कप चाय मैं आपके लिए नहीं अपने लिए लेकर आया हूँ, मुझे पता है कि आप चाय नहीं पीती, देव ने जवाब दिया और आराम से बैठकर चाय बिस्किट खाने लगा। आज मुझे नरगिस की बहुत याद आ रही है, तुम किसी काम के नहीं हो, अब इसमें मेरी क्या गलती है कि यहाँ पर कॉफी नहीं मिलती, देव ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। क्या पानी भी नहीं मिलता? सॉरी, लाना भूल गया था, देव ने एक कान पकड़कर जवाब दिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, भुक्कड़ कहीं के, मैं ही लेकर आती हूँ, कहकर वैदेही वहां से बाहर गई। बाहर आकर उसने देखा कि कुछ लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। ये लोग होटल के क्लीनिंग स्टाफ से थे। सुना तुमने कि कल रात पुलिस को उसी जगह पर एक लाश मिली है? एक औरत ने कहा। वो वहां पर सफाई करने के बजाय खड़ी होकर बातें करने लगी। उसे चुप कराते हुए दूसरा सफाई कर्मचारी बोला, धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो आफत हो जाएगी। अब ये छुपा थोड़ी ना है कि ये किसने किया होगा। पता नहीं कौन बेवकूफ था जो दादा के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत कर रहा है। वैदेही उनके पास गई और उनसे पूछा, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? किसी की नहीं मैडम, सफाई वाली ने जल्दी से अपनी झाड़ू उठाई और वहां से जाने लगी। दूसरा सफाई कर्मचारी भी वहां पर सफाई करने लगा। क्या ये लोग राघवेंद्र की बात कर रहे थे? इस इलाके में सब लोग उसे दादा कहते हैं, और इतनी बेरहमी से उस इंसान को मारा गया था, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या सच में राघवेंद्र प्रताप सिंह इतना बुरा है? वैदेही असमंजस की स्थिति में खड़ी वहां पर सोच रही थी। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उसे वहां देखा तो तुरंत पहचान लिया। वो उसके पास आकर बोला, क्या हुआ मैडम, किसी चीज की जरूरत है क्या? उसके आवाज लगाने पर वैदेही का ध्यान टूटा। वो मुझे एक कप कॉफी चाहिए थी, उसने हड़बड़ाहट में जवाब दिया। वैदेही की बात सुनकर वो हंसा और फिर बोला, अच्छा आपको कॉफी चाहिए, ये कोई 5-स्टार होटल तो है नहीं मैडम जो आपको उठते ही कॉफी चाहिए, वैसे भी ये सिर्फ रहने के लिए बनाया गया है, खाने पीने का सामान यहाँ से थोड़ी दूर पर बनी टपरी पर मिलता है, आपको कुछ चाहिए तो वहां से ले आइए। वैदेही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वापस कमरे में आ गई। उन लोगों की बातें सुनकर वो परेशान हो गई थी। देव ने उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखे तो उसने पूछा, मैंने कहा था ना यहाँ पर कॉफी नहीं मिलेगी, हम लोग किसी होटल पर चलकर ले लेंगे, मैं कॉफी ना मिलने की वजह से परेशान नहीं हूँ देव, अभी कुछ देर पहले मैं बाहर गई तो यहाँ के सफाई कर्मचारी बातें कर रहे थे, हमें जिस रिपोर्टर की लाश मिली थी उसे किसी दादा ने मारा है, इसका मतलब यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि उस रिपोर्टर को राघवेंद्र ने ही मारा होगा, वैदेही ने अपनी परेशानी का कारण देव को बताया।
और इस बात की क्या गारंटी है कि वो दादा राघवेंद्र प्रताप सिंह ही है? हम कब से दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने लगे? वैदेही ने भी देव की बात पर सहमति जताई। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मुझे दिन में 2 से 3 बार कॉफी चाहिए होती है। यहाँ पर तो पानी का भी ठीक से इंतजाम नहीं है, वैदेही ने सिर पकड़ कर कहा। लेकिन इस तरह की जगह पर जल्दी से किसी की नजर नहीं पड़ती, तो ये छुपने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। रही बात कॉफी की, तो मेरे होते हुए आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बाहर चलकर कॉफी और ब्रेकफास्ट का देखते हैं। वैदेही ने उसकी बात पर सहमति जताई। उन दोनों को ही वो जगह पसंद नहीं आई, लेकिन उन दोनों के रुकने के लिए इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती थी। दोनों कुछ देर के लिए वहां से बाहर आ गए। उन्हें वहां पर एक ठीक ठाक सा 3-स्टार होटल दिखा, जहां पर कॉफी और नाश्ते का इंतजाम था। दोनों वहां पर नाश्ता कर रहे थे। वहां पर लगी टीवी स्क्रीन में कल रात रिपोर्टर की लाश मिली थी, उसकी न्यूज आ रही थी। सच कहूं तो हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए था, ये हमारे काम का हिस्सा नहीं था, लेकिन हम उसे ऐसे वहां पर कैसे छोड़ सकते थे? वैदेही ने उस न्यूज को देखकर कहा। सही कहा आपने, प्रतीक सर को इस बारे में पता चला तो वो पक्का हमें डांटेंगे, देव ने जवाब दिया। उनकी फिक्र तुम मत करो, उन्हें मैं देख लूंगी। हम यहाँ से राघवेंद्र के घर के आसपास के हिस्से में चलकर कोई काम और अच्छा घर देखने की कोशिश करते हैं, देव ने वैदेही की बात पर सहमति जताई। उन दोनों को ही वो जगह पसंद नहीं आई, लेकिन उन दोनों के रुकने के लिए इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती थी। दोनों कुछ देर के लिए वहां से बाहर आ गए। उन्हें वहां पर एक ठीक ठाक सा 3-स्टार होटल दिखा, जहां पर कॉफी और नाश्ते का इंतजाम था। दोनों वहां पर नाश्ता कर रहे थे। वहां पर लगी टीवी स्क्रीन में कल रात रिपोर्टर की लाश मिली थी, उसकी न्यूज आ रही थी। सच कहूं तो हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए था, ये हमारे काम का हिस्सा नहीं था, लेकिन हम उसे ऐसे वहां पर कैसे छोड़ सकते थे? वैदेही ने उस न्यूज को देखकर कहा। सही कहा आपने, प्रतीक सर को इस बारे में पता चला तो वो पक्का हमें डांटेंगे, देव ने जवाब दिया। उनकी फिक्र तुम मत करो, उन्हें मैं देख लूंगी। हम यहाँ से राघवेंद्र के घर के आसपास के हिस्से में चलकर कोई काम और अच्छा घर देखने की कोशिश करते हैं, देव ने वैदेही की बात पर सहमति जताई। उन दोनों को ही वो जगह पसंद नहीं आई, लेकिन उन दोनों के रुकने के लिए इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती थी। दोनों कुछ देर के लिए वहां से बाहर आ गए। उन्हें वहां पर एक ठीक ठाक सा 3-स्टार होटल दिखा, जहां पर कॉफी और नाश्ते का इंतजाम था। दोनों वहां पर नाश्ता कर रहे थे। वहां पर लगी टीवी स्क्रीन में कल रात रिपोर्टर की लाश मिली थी, उसकी न्यूज आ रही थी। सच कहूं तो हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए था, ये हमारे काम का हिस्सा नहीं था, लेकिन हम उसे ऐसे वहां पर कैसे छोड़ सकते थे? वैदेही ने उस न्यूज को देखकर कहा। सही कहा आपने, प्रतीक सर को इस बारे में पता चला तो वो पक्का हमें डांटेंगे, देव ने जवाब दिया। उनकी फिक्र तुम मत करो, उन्हें मैं देख लूंगी। हम यहाँ से राघवेंद्र के आसपास के हिस्से में चलकर कोई काम और अच्छा घर देखने की कोशिश करते हैं, देव ने वैदेही की बात पर सहमति जताई। उन दोनों को ही वो जगह पसंद नहीं आई, लेकिन उन दोनों के रुकने के लिए इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती थी। दोनों कुछ देर के लिए वहां से बाहर आ गए।
दूसरी तरफ रात को ललन जब क्राइम स्पॉट पर पहुंचा तो पुलिस और बाकी के सभी लोग वहां से जा चुके थे, इस वजह से उसे वहां कुछ पता नहीं चला। उसका आदमी भी उस ऑटो ड्राइवर को नहीं ढूंढ पाया था, डर के मारे ऑटो ड्राइवर ने शहर छोड़ दिया था। राघवेंद्र से अलग ललन कुछ आदमियों के साथ मीटिंग कर रहा था, रात को बताने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। खबरदार जो किसी ने भैया जी को इसकी भनक भी होने दी, इस वक्त वो खुश है तो कोई अपनी जबान नहीं खोलेगा, ललन ने उन सबको धमकी दी। साला वो ऑटो वाला भी भाग गया, ललन भैया अब उसका नंबर भी बंद आ रहा है, जरूर उसने अपना सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया होगा, एक आदमी ने जवाब दिया। जो भी हो, लेकिन आज के दिन भैया जी से कोई कुछ नहीं कहेगा, जानते हो ना आज उनके लिए कितना स्पेशल दिन है। सबने ललन की बात पर सहमति जताई और राघवेंद्र प्रताप को कुछ भी ना बताने का सोचा। आपस में ही सब कुछ डिसाइड करने के बाद वो लोग बाहर आए। बाहर पूरी हवेली को फूलों से सजाया गया था। हवेली के अंदर अलग अलग पकवानों के बनने की खुशबू आ रही थी। वहां एक महाभोज रखा गया था, जहां गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। घर के लोग भी काफी खुश और बने ठने थे, मानो वहां किसी त्योहार का आयोजन किया गया हो। लल्लन आदमियों को सब कुछ समझा चुका था। वो राघवेंद्र से मिलने अंदर गया तो वो अपने बाकी के परिवार के साथ था। तुम सब लोगों को साथ लेकर बप्पा के मत्था टेकने जाऊंगी, आज मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, इन खुशियों का आगमन तुम्हारी वजह से हुआ है राघव, भगवान करे तुझे मेरी उम्र भी लग जाए, राघवेंद्र की माँ सुमित्रा ने उसकी बलैया लेते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आरती धीरे से बुदबुदाई। आई बोल तो ऐसे रही है जैसे इनकी जिंदगी के अभी बहुत सारे साल बचे हैं, अरे गिने चुने 2 साल या 3 साल तो बचे हैं, वो भी दादा को दे देगी तो फिर खुद क्या करेगी? कम से कम आज के दिन तो तुम मीठा बोल ही सकती हो आरती, किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? आरती के पास खड़े उसके पति ने उसकी बातें सुन ली थी और उसे डांटा। जवाब में आरती ने मुंह बनाया। राघवेंद्र ने लल्लन की तरफ देखा तो उसे इशारे में सब कुछ ठीक होने के बारे में पूछा। लल्लन ने दूर से अंगूठा ऊपर करके सब कुछ ठीक होने का इशारा किया, जिसे देखने के बाद राघवेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आई सब लोग आ गए हैं ना, कहीं कोई छूटा तो नहीं? राघवेंद्र ने पूछा। अरे ऐसा हो सकता है क्या कि राघव दादा के घर पर महाभोज रखा गया हो और गांव के लोग ना आए? गांव के लोग तो क्या, आसपास के गांव के सभी रिश्तेदारों को भी बुलाया है मैंने, अरे वो भी तो देखें कि राघव की क्या ठाट है,
सुमित्रा ने खुश होकर कहा। फिर उसकी नजर आरती पर पड़ी तो उसने उसे ताना मारकर कहा, आरती तेरे घर वाले कब तक पहुंच रहे हैं? और हाँ, तेरी बहन तो आ रही है ना? हाँ हाँ आए, बस थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे, आरती ने जवाब दिया। वहीं वैदेही और देव भी उस तरफ आए हुए थे। वहां लोगों से उन्हें पता चला कि राघवेंद्र प्रताप सिंह के घर पर इस तरह का कोई आयोजन किया गया है, तो वो दोनों भी भीड़ का फायदा उठाकर उनके घर में घुस चुके थे।